गीत राग विज्ञान नमूताहि जाति भई अर्हन्ताति महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, सभी लोग भक्ति के द्वारा भी अपना जीवन अच्छा बनाया जा सकता है, इस बात पर हमेशा की तरह आज भी विचार करने बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें भगवान की भक्ति से लोगों ने अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाया है और अच्छा बनाया है। भगवान की भक्ति की महिमा और भगवान की भक्ति का स्वरूप अगर हमारे जीवन में यह बहुत स्पष्ट हो जाए तो हम उस भक्ति अकेले के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि भक्ति करते समय हमारे मन में फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, हमारे मन में भाव किस तरह के आने चाहिए। भगवान हमसे बहुत बड़े हैं, भगवान हमसे महान हैं, और जब इस महानता का एहसास हमें है तो हमारे भीतर से भक्ति का भाव जागृत होता है। जैसे हमने मान रखा है कि भगवान महान है, यदि हमने सुन रखा है कि भगवान महान है, लेकिन अकेले मानने सुनने इतने मात्र से किसी को महान नहीं माना जा सकता, नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसकी महानता पर विचार करना पड़ेगा कि किस वजह से महान। कोई किसी को महान कह दे, किसी के क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं महान इसलिए वो महान हो गया किसी के कहने से, नहीं। इसकी अपनी महानता का कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा जिससे कि हम उसे महान माने, और फिर उसकी वो जो महानता है वो हमें इंस्पायर करे, वो हमें प्रेरणा दे, हमें इस बात का एहसास हो। तो अपन थोड़ा सा विचार करें कि हम बड़ा किसको मानते हैं, हम महान किसको मानते हैं। अगर सामान्य किसी से पूछा जाए तो भाई बड़े आदमी है, तो बड़े आदमी का मतलब क्या है, मतलब बहुत पैसे वाले है ना। ऐसे ऐसे जनरली किसी से पूछा जाए तो जिसके पास बहुत धन पैसा है उसको बड़ा मान देंगे कि भाई बड़े आदमी मतलब पैसे वाले। लेकिन पैसे होने से अगर कोई बड़ा हो जाता है तो फिर डाकू के पास भी बहुत पैसे होते हैं, इसको बड़ा मानना पड़ेगा कि ये तो बहुत मुश्किल हो गई। नहीं, ऐसा हो सकता है कि बड़ा वो है जिसका बहुत प्रभाव है, जिसको बहुत लोग मतलब जिसका अच्छा दबदबा हो जिसको कहते हैं। तो अगर ऐसा है कि जिसका ज्यादा प्रभाव हो तो फिर तो प्रभाव तो बेईमान लोगों का नहीं होता, स्वभाव तो आतंकवादी टेररिस्ट का भी होता है, वो बहुत टेरर क्रिएट करके रखते हैं, तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं कि भैया इनसे सब चीज़ें मामला गड़बड़ हो गया, फिर जिसका ज़्यादा प्रभाव है वो भी बड़ा नहीं है, जिसके पास धन पैसा है वो भी बड़ा नहीं है, तो कोई पद प्रतिष्ठा वगैरह जिसको मिल जाए वो शायद बड़ा होगा, लेकिन पद प्रतिष्ठा पा लेने के बाद भी सब लोग उसको माने ऐसा भी नहीं देखने जाता, दो चार दस गांव के लोग मान लेंगे जिस गांव में है उसको पद मिला है, बाकी पूछते ही नहीं कोई, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया कि किसको हम बड़ा मान के, किसको हम महान मान करके और उसके प्रति अपनी भक्ति, उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति तभी आएगी जबकि हम इस बात का भीतर एहसास करें कि सामने वाला बहुत महान है, बहुत बड़ा है। हमें अगर धन पैसा चाहिए हो तो फिर जो धनवान है उसका हम आदर करेंगे, उसका हम सम्मान करेंगे। हमें अगर अपना प्रभाव जमाना हो तो फिर हम जो प्रभावशाली है वो भले ही बेईमान हो, भले ही टेररिस्ट हो, हम उसकी सोबत में जाएंगे कि भैया इससे हमारा बड़ा प्रभाव बन जाएगा। हमें पद प्रतिष्ठा चाहिए हो तो फिर हम जिसके पास पद प्रतिष्ठा मिल सकती है वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन हमें तो अपने जीवन का कल्याण करना है, हमें तो अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तब से हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कितने महान माने, तो बहुत सीधी सी बात है कि जिसने अपने जीवन को अच्छा बना लिया हो और जो सबके जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनता हो या कि जो सबके जीवन को अच्छा बनाने की भावना रखता हो वो महान, जिसके भीतर इतनी उदारता हो, जिसके भीतर इतनी विशालता हो कि वो सब जीवों का कल्याण चाहता, और ऐसे तो भगवान ही हैं, अनंत भगवान, और अनंत में भी तीर्थंकर जो अपने जीवन में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हैं, कहीं भी जो ये नहीं कहते कि सिर्फ जैनों के कल्याण की भावना भाता हूँ, कहीं भी लिखा हुआ हो जैना नाम नहीं जीवा नाम लिखा हुआ, सब जीवों के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान ने भावना भाई है, यही उनकी अपनी महानता है। तो महान वो है जो कि सबके कल्याण की भावना भाए, और हम बनना चाहते हैं महान, तब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के चरणों में बैठ करके उनकी भक्ति करते समय यही भाव हमारे भीतर भी आना चाहिए कि आप जिन गुणों की वजह से महान बने हैं हम भी अपने जीवन में उनमें से धीरे धीरे करके एक एक गुण अपने भीतर लाने की कोशिश करेंगे, तभी तो हम आपके जैसे महान बन पाएंगे। और वो सबसे बड़ा गुण है कि वे सब जीवों के कल्याण की भावना भाते हैं, और हमारे भीतर अपने आसपास के परिवेश के कल्याण की भावना भी नहीं आ पाती, हम तो अपने जो परिवारजन हैं उनके सुख की चिंता तो करते हैं लेकिन कल्याण की चिंता कहाँ करते हैं। कल्याण और सुख में बहुत अंतर है, सुख तो संसार में ही मिलता है लेकिन कल्याण तो संसार के पार होने में है। अभी अगर बेटा कहने लगे कि मैं महाराज के साथ जाने तैयार हूँ तो आप क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन देख लें आप, तो मालूम पड़ जाएगा कि आपकी कितनी लगन है। हाँ, दूसरे का जा रहा होगा तो ताली पीटेंगे, हाँ ये तो मजा है, दूसरे का मोक्ष मार्ग पे लग रहा होगा तो वाह वाह क्या साहस किया आपने, और आपके माता पिता धन्य है, और फिर मंच पर माता पिता को बुलाओ और उनका सम्मान करवाओ कि वाह धन्य है। लेकिन अगर अपना बेटा ऐसी जिद करे कि मैं भी जा रहा हूँ, तब फिर उसको समझाएंगे कि तुम्हें मालूम है क्या होता है, ऐसे आसान नहीं है, ये क्या चीज़। इससे मालूम पड़ता है कि हमारे भीतर सचमुच अच्छे बनने और महान होने के लिए कोई भाव है या कि सिर्फ हमने अभी सिर्फ मान रखा। जब हमारी बारी आती है तब हम अपने और दूसरे के कल्याण के लिए कोई प्रयत्न करते हैं, चिंतित होते हैं, नहीं होते। भगवान की भक्ति करने वाले को इस बात के लिए जरूर चिंतित होना चाहिए कि मैं अपना कल्याण जीवन में कर पाऊँ, और इतना ही नहीं मेरे निकट जो लोग भी हैं वे भी अपने कल्याण का मार्ग जान सकें, ना सही वे कल्याण के मार्ग पर जाएं, पर हम अपने आने वाली पीढ़ी को कम से कम कल्याण का रास्ता भी तो दिखाएं। जहाँ एक हाथ में हम चाबी सौंपते हैं अपनी तिजोरी की, वैसे ही हम एक हाथ में उसके कल्याण की बात भी तो सौंपें। ये दोनों चीज़ें एक साथ क्या हमारे जीवन में आ सकती हैं, हम इसका प्रयास करें। एक कौशल नरेश हुए, उन दिनों इस तरह होते थे अपने अपने स्टेट के अपने अपने शहर के राजा हुआ करते थे, तो वो कौशल देश के राजा थे, तो कौशल नरेश और बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रसिद्धि ऐसी नहीं पाई थी, उन्होंने प्रसिद्धि पाई थी अपनी दानवीरता से, अपनी उदारता से। सबके लिए वे हमेशा मदद करने तैयार होते। लेकिन क्या होता है कि कोई इस तरह से प्रसिद्धि पा ले तो फिर जो प्रसिद्धि नहीं पा पाता है तो वो किसी दूसरे माध्यम से प्रसिद्धि पाने की कोशिश करता है, और जिस व्यक्ति को प्रसिद्धि मिली है उसको टॉर्चर करता है ताकि वो मुश्किल में पड़ जाए। तो उसकी प्रसिद्धि कम हो तब तो अपनी बढ़ेगी। देखो, अपनी लाइन बढ़ानी हो तो दो तरीके हैं कि अपनी लाइन बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करें, लेकिन वो तरीका ज़रा कठिन है। तो सरल तो तरीका ये है कि बाजू वाले की थोड़ी लाइन कम कर दें तो अपनी अपने आप बड़ी हो जाएगी। ये बहुत आसान सा तरीका अपन खोज लेते हैं। पूजा पाठ भी करते हैं तब भी कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम उनसे ज़्यादा अच्छी पूजा करेंगे, भावों की अपेक्षा नहीं, सामान की अपेक्षा। वो उनने जो सिद्धिका का विधान किया था पिछले दिनों, उन्होंने तो बहुत कम द्रव से किया था। मैं तो इस बार और बढ़िया द्रव दिखा दूंगा लोगों को कि कैसे किया जाता है। अरे, यहाँ पर भी नहीं होना तो ये चाहिए था कि मैं पिछले बार जितने अच्छे भावों से किया था उतने उससे भी ज़्यादा अच्छे भावों से करूँगा, ये तो फिर भी ठीक है। लेकिन दूसरा अगर अपना कल्याण कर रहा है तो वो भी हमें चुभता है, हमें लगता है कि नहीं, इसको भी मैं जब तक नीचे नहीं कर दूँ तब तक तो मेरा क्या। तो जो काशी नरेश थे वो कौशल नरेश से बहुत ईर्ष्या रखने लगे, और बेवजह उनने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, पर आपके अंदर ये क्वालिटी क्यों है, आप इतने दानवीर और उदार क्यों, हम आपको डिफीट करेंगे। मतलब कोई अपना जीवन अच्छा बनाना चाहे तो आज के समय में बड़ा मुश्किल है। जो अपना जीवन नहीं अच्छा बना पाते उनके सामने चुनौती खड़ी हो जाती ना। असल में कोई अगर अच्छा बन रहा हो तो जो अच्छा नहीं बन पाता उसको बहुत मुश्किल होती है। वो लोमड़ी के अंगूर खट्टे वाला मामला है ना, सॉल्व रैशनलाइजेशन। साइकोलॉजी में तेरा मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है ये लोमड़ी के अंगूर खट्टे। वो जाती है अपनी सहेलियों से बात करके कि मैं अंगूर खाने जा रही हूँ, तो जाकर के वहाँ पहुँचती है तो वो अंगूर का पेड़ थोड़ा ऊंचा था, वो उछाल करके और अंगूर खाना चाहती लेकिन नीचे गिर जाती, फिर उछलती फिर नीचे गिरती, फिर बाद में उसने देखा कि कोई फायदा नहीं। वापस लौटती है तो बड़े शान के साथ पूछती है उसकी सहेलियाँ कि अंगूर खाए, उसकी क्या खाने लायक ही नहीं थे, सब खट्टे थे, तुमने खाए। मैं असफल हूँ ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे लायक ही नहीं था। ये प्रवृत्ति हमारी किस बात की सूचना देती है, हम अच्छाइयों को क्या सचमुच अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं, हम वैसे ही महान बनना चाह रहे हैं। नहीं, कई बार तो लगने लगता है कि सिर्फ हम अच्छाइयों का दिखावा करना चाह रहे हैं कि हम अच्छे हैं, सचमुच हम अच्छे हैं इस तरह का कोई प्रयत्न नहीं करता। और काशी नरेश ने आक्रमण कर दिया कौशल नरेश पर। अब वो बेचारे तो अपने धर्म ध्यान में लगे रहते थे, उन्होंने ऐसा कभी सोचे नहीं था कि कोई लड़ना वड़ना पड़ेगा, तो हार गए तो जंगल में चले। कोई हार जाता राजा तो फिर अपना राज छोड़ के जंगल में रहना पड़ता, जंगल में रहने लगे। लेकिन बड़ी मुश्किल कि वो जंगल में है तो जो काशी नरेश के लोग थे और जो कौशल नरेश के लोग थे वो सब उन्हीं की चर्चा करते कि कितने प्यारे राजा थे। मैंने कौशल नरेश के राज्य के लोग तो प्रशंसा करें तो करें, काशी नरेश के राज्य के लोग भी प्रशंसा करते कि हमारे राजा ने बेकार में उनको और हरा दिया और जंगल में जाना पड़ा, इसके प्यारे राजा उनके पास तो कभी भी चले जाओ, हमेशा मदद करते। अब ये बात और ज्यादा तकलीफदायक हो गई कि हमने इनको हरा का हरा दिया और प्रशंसा उन्हीं की हो रही, ये बड़ी मुश्किल। अब एक और घोषणा कर दी कि जो कौशल नरेश को जीवित या मृत लेकर के आएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब कौशल नरेश छुपते छुपते जंगल में रहने लगे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यापारी उस जंगल में भटक गया, और भटक गया तो कौशल नरेश से मिला और वो उनसे रास्ता पूछने लगा। कहाँ जाना है? मुझे कौशल देश जाना है। तो कौशल देश क्यों जा रहे हैं? उसे तो मालूम नहीं था कि कौशल राजा हार गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुझे कौशल देश जाना है, काहे के लिए जाना है? मैंने सुना है वहाँ के राजा बहुत उदार हैं, मेरा व्यापार यहाँ चल नहीं रहा, मैं उनके यहाँ जाऊँगा, वे मुझे कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे, और थोड़ा सा कैपिटल मेरे पास होगा तो मैं उन्हीं के राज्य में थोड़ा व्यापार करके और अपना धन कमा के अपने देश लौट जाऊँगा। अच्छा, तो आप कौशल नरेश से मिलना चाह रहे हैं, पर वे आपकी मदद करने की स्थिति में नहीं हो तो क्या क्या करेंगे आप? तो व्यापारी कहता कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमने तो यहाँ तक सुना है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, तब भी वे मदद करने के लिए भाव तो रखते हैं, वे मदद करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। अच्छा, ऐसा है? अब कौशल नरेश बड़े असमंजस में है कि इतना मेरे प्रति इसका विश्वास है, मैं ही कौशल नरेश हूँ, लेकिन आज इसकी मैं मदद क्या कर सकता हूँ? तुरंत उनके दिमाग में आइडिया क्लिक कर जाता है कि एक मदद हो सकती है, क्योंकि उनने भी सुन रखा है कि काशी नरेश ने इनाम घोषित किया है जीवित या मृत, तो मैं तुम्हारी मदद। तो अब उसको तो नहीं बताया कि मैं कौशल नरेश हूँ, चलो आओ मैं ले चलता हूँ तुम्हें। और काशी नरेश के पास उस व्यापारी को लेकर के कौशल नरेश खुद पहुंच जाते हैं। काशी नरेश दंग रह जाते हैं, दरबार में बैठे हुए हैं, सजा बैठी हुई है, सब देख करके कि क्या हुआ, कैसे आ गए एकदम अचानक, इनको तो ढूंढा जा रहा था जीवित या मृत लाया गया और ये खुद उपस्थित हो गए। तो कौशल नरेश आकर के कहते हैं कि आपने मेरे ऊपर कोई इनाम घोषित कर रखा है ना, मैं स्वयं उपस्थित हो गया हूँ, लेकिन इस व्यापारी को ये मुझे लेके आया है, इसे जितना भी आप देना चाहें इनाम वो इसको दे, इसकी मदद। सारी बात सुनकर के दंग रह जाते हैं काशी नरेश। कहानी में लिखा हुआ है कि सिंहासन से जिसके लिए सिंहासन छुड़ा लिया उसके लिए सिंहासन से नीचे उतर करके और सिंहासन देते हैं, और फिर सिंहासन पर बिठाल करके कहते हैं कि अब तुम्हें इस व्यापारी को जो देना हो वो दो, साम्राज्य तुम्हारा। आप सोचिएगा कि क्या ऐसा अपन कर पाते हैं? अपन तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, अपन तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, अपन तो बहुत भक्ति भावना रखते हैं भगवान के प्रति, और अपने मन में क्यों नहीं इस तरह के थॉट्स आते हैं, इस तरह की फीलिंग्स अपने मन में क्यों नहीं आती? अपन तो दूसरे की मदद के लिए, अरे कहाँ तक मदद करते रहेंगे, क्या पूरी जिंदगी दूसरे की मदद करते रहेंगे क्या? इस तरह के थॉट्स तो आ जाते हैं, लेकिन इस तरह का भाव नहीं आता है कि मेरे जीवन में अगर किसी की मदद मेरे से हो सके। भगवान ने तो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, भाई हम तो अपने आसपास के जीवों के कल्याण के लिए कुछ प्रयत्न भी नहीं कर सकते, तब फिर हम उनकी भक्ति क्या करेंगे? हम तो सिर्फ भक्ति का एक दिखावा करके लौट जाएंगे। भक्ति तो सच्ची वो है कि उनके जैसे गुण हमारे भीतर रोज रोज आते चले जाएं। सच्ची भक्ति उसी दिन शुरू हो जाएगी, अभी तो सिर्फ उनके चरणों में बैठ करके उनके गुणगान कर रहे हैं, ये भी भक्ति का एक ढंग है, लेकिन ये भक्ति का ढंग अगर आगे बढ़ता चला जाए और रोज रोज इस भक्ति से हमारे जीवन में भी गुणवत्ता बढ़ती चली जाए, तब मानिएगा कि हमारी भक्ति सार्थक हो गई। वादीराज महाराज ऐसी ही भक्ति कर रहे हैं, क्या जरूरत थी उनके लिए अपने कुष्ठ रोग को दूर करने की, कोई जरूरत नहीं। वे तो इतने दिन से अपनी उस पीड़ा को शरीर की सहन कर रहे थे, लेकिन एक भक्त आकर के जब उनके पास ये कहता है कि राज दरबार में मैं ये कह के आया हूँ कि जैन साधु तो अत्यंत सुंदर देह को धारण करने वाले होते हैं, उनकी देह कुछ रोग से ग्रसित नहीं हो सकती, मैं ये कह के आया हूँ, अब आपको मेरी रक्षा है। उस बात से वे भक्ति कर रहे हैं भगवान की, अपने लिए नहीं, उस एक जीव का अहित न। और इतना ही नहीं, धर्म की अप्रभावना न। इसके लिए क्या अपन अपने जीवन में इस तरह भक्ति करते हैं? क्या अपन ने कभी कोई भगवान की भक्ति के समय ऐसी प्रार्थना करी है कि प्राणी मात्र का कल्याण, वो जो मैं रास्ते में आ रहा था एक बहुत गरीब व्यक्ति दिख गया था, भगवान आज की भक्ति का फल अगर मुझे मिले तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने उस दुख से मुक्त हो जाए। क्या कभी ऐसा मन में अपन ने भक्ति करते समय भाव आया? नहीं आ पाया, लाना पड़ेगा, प्रयत्न करके लाना पड़ेगा। संस्कार तो वैसे नहीं है, पर संस्कार तो डालना पड़ेगा। अनादिकाल के संस्कारों को तोड़ करके और भगवान की भक्ति का ऐसा संस्कार डाल करके तभी तो हम अपने जीवन को अच्छा बना पाए। और वादीराज महाराज अंत में भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं, भक्ति कहाओ महेंद्र पूजित पद स्वकीर्तने न क्षमा, सूक्ष्म ज्ञान रसो की संयम भ्रता के हंत मंदा वयम अस्मादी चित्तवन चलेन तु परस त्वयादरस्तन के स्वात्मा धीन सुख है कि नाम सखरुना कल्याण कल्पद्रुम। भगवान भक्ति भाव से नम्रीभूत होकर के अत्यंत भक्ति से भर करके, जैसे कि वृक्षों पर जब फल आ जाते हैं तब वे अनायास ही झुक जाते हैं। जो जितना भक्ति से भरेगा वो उतना ज्यादा झुक जाएगा, उसके जीवन में उतनी विनय आनी शुरू हो जाएगी। और यही बात वादीराज महाराज कह रहे हैं कि भगवान भक्ति भाव से अत्यंत नम्रीभूत होकर के सौ सौ इंद्र आपकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, आपके गुणगान तो जो सूक्ष्म दर्शी गणधर परमेश्वरी जैसे महान आत्माएं हैं, और इतना ही नहीं संयम को धारण करने वाले हैं ये सब आपकी भक्ति करते हैं। अत्यंत ज्ञानवान और संयम को धारण करने वाले लोगों के द्वारा आपकी स्तुति की जाती है भगवान। और हम के हंत मंदा वयम, के मंदा वयम, अत्यंत अल्प बुद्धि कहाँ हम और कहाँ वे सूक्ष्म ज्ञान को धारण करने वाले, संयम को धारण करने वाले महान आत्माएं आपकी भक्ति करते हैं। खेद है कि हम अत्यंत अल्प बुद्धि, आपकी क्या भक्ति है? भक्ति ज्ञान से होती है ये नहीं समझना, पर एक चीज ध्यान में रखना, अज्ञानी के द्वारा की गई प्रशंसा अत्यंत खतरनाक है। क्या अज्ञानी के द्वारा की गई प्रशंसा, जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसके लिए बहुत खतरनाक है, और ज्ञानी के द्वारा की गई निंदा भी अत्यंत श्रेष्ठ है। और वो क्या रहा है, भगवान की भक्ति कौन कर रहा है? ज्ञानी के द्वारा की गई निंदा भी श्रेष्ठ है, तो फिर ज्ञानी के द्वारा की गई प्रसन्नता प्रशंसा तो अत्यंत श्रेष्ठ है। इस अपेक्षा से कह रहे हैं, नहीं तो अपन ये सोच लें कि जो ज्ञानवान है यही भक्ति कर सकते हैं, ऐसा आप मत लगा लेना। कहना ये चाह रहे हैं कि इतने ज्ञानवान होकर के भी, इतने संयम को धारण करने वाले होकर के भी वे आपकी भक्ति कर रहे हैं, और हम तो उतने ज्ञानवान नहीं हैं, पर फिर भी आपकी भक्ति करने खड़े हैं। जैसे कि मानतुंगाचार्य महाराज कहते हैं, अल्पश्रुतम शुद्ध बताम परिहास धाम तद्भक्ति रे मुकुरी कुरुते वलान माम, ये कोकिला किलमदौ मधुरम विरोती तत्म्र चारु कलिका निखरई की। एकमात्र कारण कोयल के मधुर स्वर में गाने का अगर कोई है तो इतना ही है कि आम की मंजरियां लगने लगी हैं, आम में मोर आ गई है, वो कोयल को प्रेरित कर रही है कि वो मधुर स्वर में गाए। भगवान, ये जितना नेचुरल है, कहीं कोई इसमें कृत्रिमता नहीं है, मेरी भक्ति भी इसी तरह की है। हालांकि मैं अल्प शुद्ध हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ और ज्ञानवान के बीच में मैं हंसी का पात्र होऊंगा, लेकिन क्या करूं, वलान माम सद्भक्ति ये मुखरी पुरुषे, मुझे जबरदस्ती आपकी भक्ति आपका गुणगान करने के लिए कह रहे। अपने भीतर भगवान के सम्मुख पहुंच करके क्या ऐसा ही भाव आता है कि नहीं आता, कि मैं क्या कर पाऊंगा भगवान आपकी स्तुति। अपन को तो ये लगता है कि नहीं तो कर पाऊंगा स्तुति, बाकी क्या कर पाते हैं, नहीं लगता है ऐसा। तभी तो अपन बड़े उसके जो है, हाँ सब सब अच्छे से बैठ करके, मैं तो यहीं पर बैठूंगा, ये मेरी जगह है यहाँ पर, आप वहाँ किसका लो अपने, आप क्या करोगे, बस कि मैं यहाँ जिंदगी से कर रहा हूँ, यहीं बैठता हूँ, यहीं पर देख लिया मैंने, यहीं पर देख लिया, देखता रहता हूँ, यहीं पर बैठूंगा, जगह ही बदल सकते हैं यहाँ से, मेरी जगह है, अब बताओ। अब ऐसे भावों से भक्ति होगी क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं कहाँ आपकी स्तुति और भक्ति कर सकता हूँ, मुझ जैसा अल्पज्ञ और मुझ जैसा अज्ञानी तो दूसरा नहीं है, पर क्या करूँ, भक्ति भाव से भरा हुआ मेरा मन आपके गुणगान करने की प्रेरणा दे रहा है, मैं स्तुति क्या कर पाऊंगा, स्तुति तो बड़े बड़े लोग करते हैं। इतनी विनय के साथ, इतने लंबी भूत होकर के भक्ति करने की प्रक्रिया अपने यहाँ पर कही गई। भगवान की महानता का एहसास अगर हो तब फिर इतनी विनय अपने आप आ जाएगी। इसलिए दोनों चीजें हो गई, हमें सबसे पहले भक्ति करते समय भगवान की महानता का एहसास हो, और इतना ही नहीं, जब हम उनकी महानता का एहसास करें तो कितने महान महान लोगों ने उनकी पूजा अर्चना और भक्ति करी है, हम कहाँ इतने अल्पज्ञ उनके सामने, तब ऐसी विनय से भर करके हम पूजा करें। तब बाद में आज वादीराज महाराज क्या कहते हैं कि भगवान फिर भी मैं स्तुति तो कर रहा हूँ, पर वास्तव में स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्तुति के बहाने अपना आपके प्रति अनुराग व्यक्त करता हूँ, मैं स्तुति क्या करूँ, मैं तो सिर्फ अपना आदर आपके प्रति, अपना अनुराग ही व्यक्त कर पा रहा हूँ, अपनी भक्ति आपके प्रति व्यक्त कर पा रहा हूँ, स्तुति तो मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगी, मैं कहाँ ज्ञानवान। पर मुझे विश्वास, इसके बाद भी कह रहा कि फिर भी मुझे विश्वास कि मेरे ये स्तुति जो की जा रही है आपके प्रति, मैं जो अपना आदर आपके प्रति व्यक्त कर रहा हूँ, मैं जो अपना अनुराग आपके प्रति व्यक्त कर रहा हूँ, वो जो अनुराग है आपके प्रति, वो मेरे लिए कल्प वृक्ष के समान है, मैं जो चाहूँगा वैसा फल मुझे प्राप्त हो। तो इतना कॉन्फिडेंस, भले ही मैं स्तुति करने में कि लायक ना हो, मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ, आपकी स्तुति नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपके प्रति अपना आदर तो व्यक्त कर ही सकता हूँ, आपके प्रति अपना अनुराग तो व्यक्त कर ही सकता हूँ, वो जो मैं आपके प्रति अपना अनुराग व्यक्त कर रहा हूँ, वो अनुराग ही मेरे लिए कल्प वृक्ष के समान है। स्वात्माधीन सुखे कि नाम सखरु न कल्याण कल्पद्रुमा, जिसको अपने आत्मा का सुख पाना है, जिसको संसार के सुख पाना है, वो लक्ष्यदार भाषा में करें भगवान की भक्ति क्या। हाँ, क्योंकि अब वो प्रसन्नता करनी पड़ेगी, जब तो प्रसन्न होंगे और कुछ देंगे, मुझे तो स्वात्माधीन सुख है कि नाम, मैं तो वैसा सांसारिक सुख चाहने वाला नहीं हूँ, मुझे तो आत्मात्मिक सुख पाना है, और आत्मात्मिक सुख पाने वाले के लिए तो भगवान के प्रति अनुराग ही पर्याप्त है, क्योंकि जिसके प्रति अनुराग होता है उसके जैसे ही हम बनते हैं, और भगवान के प्रति अनुराग है तो हम तो भगवान ही बनेंगे, यही तो भगवान की भक्ति हमारे लिए कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे भीतर भक्ति के दौरान भगवान की भगवत्ता का एहसास, उनकी महानता का एहसास और अपनी अल्पज्ञता का, ये दोनों एक साथ बहुत साइमल्टेनियस होने वाली चीज, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। देखो विनती लिखते समय मैं तो सोचता हूँ एक लाइन में विनती हो जाती है, अगर करना चाहें प्रभु पति पावन और मैं अपावन, खत्म। इससे एक इसी में तो पूरा हो गया काम, आप पति पावन हैं और मैं अपावन हूँ। ये आ नहीं पाता, ये बहुत कठिन है। मैं सेठ जी हूँ, पूजा करने आए, मैं ऑफिसर हूँ, मैं पूजा करने आए, जरा हटो।
किसी की महानता को देख पाएगा ऐसी विनय हमारे भीतर आ जावे भगवान की भक्ति के दौरान ही सही भैया, कि उस समय हम भूल जावे कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, भगवान की भक्ति के लिए जो आए हैं सब बड़े हैं, इस एहसास से भर करके हम उस समय भक्ति करें तो हमारी भक्ति हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकती है। एक संत हुए हैं उधर महाराष्ट्र साइड में, उनके बारे में प्रसिद्धि है कि वो बहुत विनम्र थे और बहुत सज्जन थे, इसलिए लोग उनको संत कहा करते थे। रहते थे घर गृहस्थी में लेकिन फिर भी संत कहलाते थे। तो वो जुलाहे का काम करते थे, ताना बाना बुन करके कपड़ा बनाते थे, फिर कपड़ा बेचते भी थे। तो इतने अधिक विनयवान थे, कोई व्यक्ति बहुत अधिक विनयवान हो, बहुत सरल हो, बहुत सज्जन हो, तभी लोगों को थोड़ा सा मजा लेने का मन रहता है ना। तो विशेष रूप से युवाओं के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति संगति से बन जाती। 20% की बात करो, 80% की बात नहीं करें। तो उसमें से कुछ युवाओं ने सोचा कि ये इतने सरल इतने विनम्र, अपन तो उसको आज के समय बुद्धू कहेंगे, मतलब थोड़ा चालाक हो तो अपन उसको अपीडेट मानते हैं, है ना, और थोड़ा सा सरल हो, विनम्र हो, आउट ऑफ डेट, है ना, ये अपना अच्छा क्राइटेरिया अपन ने बना दिया इन दोनों। कितने जल्दी, मतलब जो कई चीजें हैं अगर इन पर विचार करें अपन तो बड़ा मजा आएगा, अपन को खुद हंसी आएगी कि अपन ने क्या बना दिया है। रात में खाने वाला अप टू डेट, रात में नहीं खाने वाला आउट ऑफ डेट, बेईमानी करने वाला अप टू डेट, ईमानदार आउट ऑफ डेट, ये क्या है, क्या क्राइटेरिया बन गया आज के समय में। नहीं है ऐसा, आपने भीतर झांक के देखना ऐसा लगता है। अब इन युवाओं ने सोचा कि इनके तंग करेंगे और ये इसकी दुकान पर गए, कहा कि हमें धोती खरीदनी है, ठीक है ले लो। जैसे इनको धोती दिखाई, कितने की है, आठाने पैसे, कैसे कहे माने आठाने पैसे। उन्होंने उन्हीं के सामने उसके दो टुकड़े कर दिए, इस एक टुकड़े की कितनी कीमत है। उन्होंने बड़े सहज भाव के बाद बिना एक्साइट हुए, बिना क्षुब्ध हुए, चार आने पर उन्होंने सिर्फ के दो टुकड़े कर दिए, इसकी कितनी कीमत है, दो आने पर। अभी भी कितनी है इनको, हम तो करके ही जाएंगे, इनको तकलीफ पहुंचा के ही जाएंगे, पर एक चीज ध्यान रखना, जो जितना सरल और विनम्र होगा इस पर कितने भी आक्रमण किए जाएंगे इसे तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता। बच्चन को लिखना पड़ा, मेरी लड़का बहुत गई लगड़ी मछली है पर नहीं हुई कठोर, लगता है असली है। नवनीत को तलवार से भी काटो न काट पाएंगे आप, परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे। नवनीत तो नवनीत, ऐसे ही नवनीत की तरह भगवान की भक्ति की जा सकती है, तब फिर संसार का कोई दुख आकर के भी उसे दुखी नहीं कर सकता, संसार की कोई भी चीज उसे संसार में से फंसा नहीं सकती। ये भगवान की भक्ति के लिए तैयारी हमें करनी पड़ेगी, और दो आने पैसे और उसके भी दो टुकड़े, तो एक आने पैसे और उसके भी दो टुकड़े, तो एक आने का भी आधा, छह आने का, छह पैसे का एक आना होता तो तीन पैसा, और फिर आधा करते करते वो तो चिंदी चिंदी हो गया कपड़ा। तब पूछा कि इसकी क्या कीमत, तो बोले अब इसकी कोई कीमत नहीं, ऐसे ही ले जाओ। इतना धैर्य रखा तो सामने वाला भी मुश्किल में पड़ गया। अब वो पानी पानी माफी मांग रहा है कि क्षमा करें, ये सब की कीमत हो सके हमने आपका बहुत बिगाड़ कर दिया, इस सब की कीमत ले लें आप। तो मालूम क्या कहा उन्होंने कि कीमत की चुकता करना चाहते हो तो जरा कीमत चुकता करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आप हमें पैसे की इसकी कीमत अदा नहीं हो पाएगी। कपास उगाओ, ताजा बनाओ और फिर कपड़ा बुनो, तब इसकी कीमत पूरी हो सके। जीवन में कोई व्यक्ति अगर महान बनता है तो उसकी महानता को प्राप्त करने के लिए हमें भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी कीमत हम इन भौतिक उपलब्धियों से नहीं चुका सकते हैं जो हम सोचते हैं कि हम इस तरह से अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे भगवत्ता को। भगवत्ता न धन पैसे से, न पद प्रतिष्ठा से, न और चीजों से प्राप्त होती है। भगवत्ता तो इन सब चीजों को छोड़ करके भगवान के चरणों में सरेंडर होने से, अपने आप को बहुत अल्प मान करके भगवान की भक्ति करने से वैसी भी भगवत्ता प्राप्त होती है। अपन थोड़ा थोड़ा करके पुरुषार्थ करें और इस तरह भगवान की भक्ति से अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ खुद आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक नग्न स्वरूप तुम्हारा करता का करता दिल दर्शन करने वाला है।
जानते सूर्य कल के बीच आध्यात्मिक चेतना के मधुर तल गुंजित हैं। हमारा रोम रोम जीवन और जगत के प्रति सद्भाव से भीत है। भारतीय संगीत के